समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी और जानेंगे कि उनके पास क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिवस है। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी नमस्कार।
हेलो सरफिरोजी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट सरफिरोजी। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार सृजन पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया, कहा सरकार ने लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार के साथ साथ बुनियादी ढांचे तथा निवेश को एक समान प्राथमिकता दी।
गवर्नमेंट लॉन्चेस मॉडल वीमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत्स टू इंश्योर जेंडर सेंसिटिव गवर्नेंस प्रैक्टिसेस।
रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ के बाद 5 वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण किया।
3 CRPF जवान्स इंजर्ड इन IED ब्लास्ट इन वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ शुल्क 2 अप्रैल से लागू होंगे।
एंड इन द ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट, द सेकंड सेमीफाइनल बिटवीन न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका इज अंडरवे इन लाहौर। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about women-friendly gram panchayats for sustainable development. Well, in a significant move to advance gender-sensitive governance at the grassroots level, the Ministry of Panchayati Raj today launched its transformative initiative to develop model women-friendly gram panchayats at a national in New Delhi. This event is a key part of the Ministry's International Women's Day 2025 celebrations, seeks to ensure safety, inclusivity and gender equality for women and girls in gram panchayats across the country. The primary objective of the initiative is to establish at least one model women-friendly gram panchayat in each district. It will serve as a beacon for gender-sensitive and girl-friendly governance practices. These model panchayats will reflect Prime Minister Narendra Modi's vision of fostering safer and more inclusive rural communities, contributing to the broader goal of Viksit Bharat through Viksit Panchayats.
जी बिल्कुल अभिषेक, केंद्र सरकार जमीनी स्तर से ही विकास योजनाओं में हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध तो है ही, साथ ही सरकार खासतौर पर प्रशासन से लेकर हर क्षेत्र में महिलाओं की बराबर भूमिका सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर बल देते आए हैं। प्रधानमंत्री का कहना था कि भारत में महिलाओं के नेतृत्व में ऐसा विकास हो जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बने और पूरी दुनिया को महिला सशक्तिकरण की राह दिखाए। सरकार चाहती है कि विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी हो, लेकिन अभिषेक, ग्रामीण स्तर पर अभी भी ये समस्या महसूस की जा रही है कि महिलाओं को वहां सक्रिय भागीदारी का पूरा माहौल नहीं मिल पा रहा है। महिलाएं कहीं ना कहीं खुद भी नेतृत्व करने से कतराती हैं और महिलाओं के भीतर बैठे इसी संकोच के कारण प्रधानपति या सरपंच पति जैसी कुव्यवस्था अभी तक चल रही है और इसे समाप्त करने के लिए सरकार ने हाल ही में पंचायत नेत्री अभियान की भी शुरुआत की थी। वहीं सरकार ने महिलाओं के भीतर बैठे संकोच को समाप्त करने और उन्हें हर क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए आज से आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की। इस सम्मेलन के दौरान चिन्हित ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, साथ ही पहल की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक समर्पित मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया।
Yes, and at the global level, Article 7 of the Convention for Elimination of Discrimination Against Women, to which India is a signatory, ensures a woman's right to participate in contributing to government policy and implementing gender justice. The article asks states to take appropriate measures to eliminate discrimination against women in political and public life and to ensure that women are as eligible as men to contest elections to all public bodies. People's participation is one of the fundamental building blocks of democratic government. A democratic form of government can be successful only when all people, irrespective of gender, class and caste, participate in the governance process.
बिल्कुल अभिषेक, एक लोकतांत्रिक सरकार तभी सफल हो सकती है जब उसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो, क्योंकि हमारा समाज, हमारा देश अलग अलग वर्गों से मिलकर ही बना है और पंचायतें कैसे लैंगिक समानता और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बना सकती हैं, वो इन्हें लैंगिक समानता लाने और महिलाओं तथा लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर अपनाने की ओर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं ताकि महिलाओं की विकास योजनाओं के लाभों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा पंचायतें लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण को बढ़ावा देकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं। वहीं ग्रामीण महिलाओं को सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करके बैंक लिंकेज को बढ़ावा देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिल सकती है।
सो टू कंक्लूड आवर डिस्कशन ऑन वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सर फिरोजी, चेंजिंग द सोशल माइंडसेट ऑफ ट्रीटिंग गर्ल्स एंड वुमेन एज अ बर्डन to one of believing that they are assets and can provide solutions to problems within families and communities can lead to sustainable development. The objective should be to ensure that girls are accepted in the society and get all possible help for education, health, safety and security and overall development.
श्रोताओं, अब आपको लेकर चलेंगे देश की परिक्रमा पर और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। कहां से शुरू कर रहे हैं अभिषेक?
Yes, we start off with the story from Leh. An Army Fire and Fury Corps organized a skill training cum tour program for the selected teachers of Army Goodwill Schools of Ladakh region from 11th of February to 1st of March 2025 under Operation Sadbhavna. We have more from a Leh correspondent, Phunsok Wangmo.
Exposure cum training program for teachers working in Army-run schools, Army Goodwill School in Ladakh region, were organized by Army under the Operation Sadbhavna with collaboration with a Pune-based NGO with the aim to enhance teaching skills and knowledge of the teachers of AGS and to improve the overall education system in Ladakh. The teachers were provided with exposure to the best practices in education in the country and on various other educational aspects. The teachers of AGS established in Indo-Pak and Indochina border of far-flung areas of Ladakh, such as Bogdang, Tyakshi, Parthapur, Kharu, Harkabadur, Farona and Dras, participated in the 20-day long exposure cum skill development training. During the training session, teachers were trained on teaching methodology, application of artificial intelligence in teachings, and inclusive education for specially abled students. A flag in function was organized by Army at Leh, during which the teachers appreciated the Army for such training program and expressed their willingness to implement the gained knowledge in their respective schools. ASG teacher Kanis Fatima shared her experience about the exposure cum skill development training program and thanked the Indian Army.
इस टूर में हमने खास तौर पर इंक्लूसिव एजुकेशन और AI के बारे में सीखने का मौका मिला, जो हमारे लिए एक नहायत मालूमाती और मुफीद तजुर्बा रहा। इस तरबियत से हमें ये समझने में मदद मिली कि किस तरह तालीम को हर फर्द के लिए मसावी और मौसूर बनाया जा सकता है और जदीद टेक्नोलॉजी, खास तौर पर AI, किस तरह तदरीसी तरीकों को बेहतर बनाने में माउन साबित हो सकता है। खसूसी बच्चों, स्पेशल चिल्ड्रन को मरकजी हरे में शामिल करने की जो कोशिश की जा रही है, वो एक बेहतरीन और काबिले तारीफ कदम है। हम दिल की गहराइयों से इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया।
During the National Integration Exposure Tour, teachers visit various institutions, schools and heritage sites in Chandigarh, New Delhi and Pune. Phunsok Wangmo for Parikrama from Leh Ladakh.
और अब बात महाराष्ट्र के कोल्हापुर की, जहां के शिवाजी विश्वविद्यालय ने मोती उत्पादन फार्म स्थापित किया है। यहां के प्राणीशास्त्र विभाग ने पिछले साल 28 फरवरी को मीठे पानी में मोती की खेती का एक प्रयोग किया था। मोती उत्पादन का ये प्रयोग सफल रहा है और शोधकर्ता एक वर्ष के भीतर मोती उत्पादन करने में सफल रहे। इस अनोखी खेती के बारे में हमारे संवाददाता और अधिक जानकारी दे रहे हैं।
विश्वविद्यालय में उगाया गया पहला मोती विश्वविद्यालय के गवर्नर और चांसलर सीपी राधाकृष्णन को कुलपति डॉक्टर डी टी शिर्के द्वारा हाल ही में उपहार के रूप में प्रस्तुत किया गया। कुलपति की उपस्थिति में इस वर्ष के लिए 500 मसल्स को मीठे पानी में छोड़ा गया है। प्राणीशास्त्र विभाग के परिसर में मीठे जलयुक्त मोती अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है तथा मीठे जल मोती पर अनुसंधान एवं विकास कार्य प्रारंभ हो गया है। मोती के क्षेत्र में सफल प्रयोगकर्ता दिलीप कांबड़े के मार्गदर्शन में उचित देखभाल और खेती से मसल्स से अच्छी गुणवत्ता वाले मोती मिलने लगे हैं। लगभग 12 महीने बाद पहला मोती बना। इस अनुसंधान केंद्र को महाराष्ट्र जैव विविधता बोर्ड से अनुमति मिल गई है। पर्ल रिसर्च सेंटर के समन्वयक और जीव विज्ञानी डॉक्टर नितिन कांबड़े ने आकाशवाणी को बताया कि पिछले वर्ष मोती निर्माण के लिए जिन 100 मसल्स को पानी में छोड़ा था उनमें मृत्यु दर केवल 20% थी। लगभग 100 मोतियों के पालन और उन पर शोध का कार्य किया गया। इस एक वर्ष के दौरान पानी की गुणवत्ता को पूरी तरह से बनाए रखा गया। पूरे प्रयोग में चूंकि जल सारा वातावरण स्वच्छ है और मसल्स किसी भी तरह से दूषित नहीं है और उनमें कोई बीमारी नहीं है, इसलिए लगभग 80% मसल्स जीवित है, जिनमें से प्रयोग के लिए 34 मसल्स का उपयोग किया जा रहा है। इसके अगले चरण के रूप में विश्वविद्यालय के प्रांगण में 500 मसल के साथ काम शुरू हो रहा है। छात्र और किसान पारंपरिक खेती के विकल्प के साथ साथ एक अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में भी मोती की खेती कर सकते हैं। सिर्फ जमीन या 3 कृत्रिम या प्राकृतिक झीलों और 25,000 से 30,000 रुपयों के निवेश से 3 से 4 लाख की आय अर्जित की जा सकती है। परिक्रमा के लिए पुणे से मनोज क्षीरसागर।
From Maharashtra, now we are moving to Andhra Pradesh and the Ullas Understanding of Lifelong Learning for All in Society initiative, which focuses on enhancing foundational literacy and numeracy skills among non-literate adults, has garnered significant attention in the Vizianagaram district of Andhra Pradesh. Currently, over 48,578 individuals aged 15 and above are participating in training sessions under this government-sponsored program, facilitated by 4,857 volunteer instructors who provide lessons through both online and offline platforms. We have more from a correspondent.
Vijayanagaram has a notable track record of pioneering literacy programs. To deal with the illiteracy rate in the area, the District Adult Education Department, in partnership with the District Rural Development Agency, DRDA, has engaged instructors from self-help groups, SAGs, to support the learning process. Previously, the administration also introduced the Chitti Guruvulu initiative to combat illiteracy in underprivileged areas. Launched in 2017 in Dwarapudi village, this program involved school students from grades 6 to 8 teaching their illiterate parents. Consequently, 61 students successfully educated 280 adults, leading Dwarapudi to become the first village in the district to achieve 100% literacy. The success of Chitti Guruvulu programs received national acclaim when Prime Minister Narendra Modi acknowledged it during his Mann Ki Baat program. With inputs from Sachin Narayana, this is Sai Sisla for Parikrama from Visakhapatnam.
झारखंड के जमशेदपुर का टाटा जू जैव विविधता संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इस जू में 2 तेंदुआ शावकों और 1 मैंड्रिल बंदर शिशु का जन्म हुआ है, जो जैव विविधता संरक्षण के लिए टाटा जू के समर्पण का स्पष्ट संकेत है।
झारखंड की औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के टाटा जू में नन्हे मेहमानों के आने से जू प्रबंधन बेहद उत्साहित है। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के उपनिदेशक मोहम्मद अख्तर ने बताया कि इन नन्हे तेंदुआ शावकों को हाल ही में नागपुर जू से लाए गए तेंदुआ जोड़े ने जन्म दिया है। उन्होंने बताया कि वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में जू प्रबंधन की यह महत्वपूर्ण पहल है।
2 पेयर एक्चुअली वो लेपट के थे, तो उसमें से 1 पेयर ने अभी 6-7 दिन पहले 2 बच्चों को जन्म दिया है। क्योंकि अभी बच्चे इस लायक नहीं है कि बाहर उनको छोड़ा जाए, जब थोड़ी ताकत आ जाएगी फिर उनको थोड़ा थोड़ा निकालना शुरू करेंगे। पहले उनको कराल में निकालेंगे, फिर उनको मेन डिस्प्ले एरिया। जू में नया जानवर हम इसी महीने में टाइगर का एक पेयर लेकर आने वाले नागपुर जू से, क्योंकि हमारे पास जो 2 फीमेल है उनको हम उस ब्रीडिंग के लिए हमारे पास एक मेल का होना जरूरी है।
पर्यटकों का कहना है कि टाटा जू की पहल से इस दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिला है।
2 बच्चे ने लिपट ने जन्म लिया है, तो और उसको देखभाल अच्छा किया जाए और ज्यादा से ज्यादा उसको जानवर को और लाया जाए, जिससे यहाँ पे और थोड़ा माहौल देखने में अच्छा लगे।
पर्यटकों का यह भी कहना है कि नए नए पशु पक्षी देखने को मिल रहे हैं। नन्हे शावकों के जन्म को लेकर वे बेहद उत्साहित हैं।
तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, 2 तेंदुआ जन्म लिया है, उसको हम लोग को किस तरह से मतलब ट्रीट करना है, जो लोग जानते हैं मतलब जो यहाँ पे उसकी देखभाल कर रहे हैं वो काफी अच्छे तरीके से करें, ताकि वो और जन्म ले और हमारे इंडिया में वो सुरक्षित रहे।
तेंदुआ और मैंड्रिल जैसे अद्भुत जीवों का जन्म यह साबित करता है कि टाटा जू न केवल वन्य जीव संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है बल्कि उनकी सुरक्षा और देखभाल के उच्चतम मानकों को भी बनाए रखे हुए है। परिक्रमा के लिए रांची से शिल्पी की एक रिपोर्ट।
श्रोताओं, अब परिक्रमा में समय है खेल के मैदान की हलचल लेने का।
In the ICC Champions Trophy, the second semi-final is underway between New Zealand and South Africa in Lahore. Electing to bat first, New Zealand were 183 for 1 in 30.3 overs when reports last came in. The winner of this high-stakes encounter will face India in the finals on Sunday. India stormed into the final, beating Australia by 4 wickets in Dubai last evening. Chasing the target of 265, the men in blue comfortably reached 267 for 6 with 11 balls to spare.
जमशेदपुर में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज जमशेदपुर एफसी का मुकाबला ओडिशा से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात गोवा ने मोहम्मदन एससी को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही गोवा ने दूसरे स्थान पर अपनी जगह पक्की कर ली है। वह पहले ही मोहन बगान सुपर जायंट के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है और उसे सिंगल लेग एलिमिनेटर में भाग नहीं लेना पड़ेगा।
इन बिजनेस न्यूज, इंडियन बेंचमार्क इंडिसेस स्टेज्ड अ कमबैक टुडे विद ओवर 1% गेन। The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex rose 740 points, or 1.01%, to close at 73,730. The National Stock Exchange Nifty 50 gained 255 points, or 1.15%, to settle at 22,337, snapping its 10 losing streak. In the global crude market, Brent crude was trading at $70.52 per barrel and WTI crude was at $67.41 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading up at 86,320 rupees for 10 grams, while the silver 999 fine was also trading up 97,520 rupees per kilogram when reports last came in. And now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On the 5th of March 1931, the Gandhi-Irwin Pact was signed. The political agreement marked the end of Satyagraha against the British government that Gandhiji had initiated with the Salt March.
Gandhiji had initiated the Salt March between March and April 1930.
The Great March for Liberty began. Gandhi started on his 241-mile-long trek from the ashram to Dandi, a village on the sea coast, along with his chosen band of 78 ashram inmates, symbols of the national determination with a strong resolve and undaunted look. 61-year-old Gandhi, with his undying faith in the justice of the cause he was pursuing and in the success of the great campaign he had embarked upon, marched at the head of the procession with quick and unfaltering steps.
Bapu's arrest and imprisonment at the end of the march sparked off one of his more effective civil disobedience movements in British India. By the end of 1930, thousands of Indians were in jail and the movement had generated worldwide publicity.
Lord Irwin was looking for a way to end it. To this end, Gandhiji was released from custody in January 1931. Gandhiji was authorized by the then President of the Congress, Sardar Vallabhbhai Patel, to negotiate with Lord Irwin. As per the pact, Gandhiji, on behalf of the Indian National Congress, agreed to discontinue the civil disobedience movement. The Congress agreed to join the second roundtable conference to chalk out constitutional reforms. It was also agreed that the British would withdraw all orders imposing curbs on the activities of the Indian National Congress.
They also agreed to withdraw trials relating to several offences, except those involving violence and release of prisoners arrested for participating in the civil disobedience movement. It was also agreed that the British would remove the tax on salt, which allowed Indians to produce, trade and sell salt legally and for their own use.
We also remember freedom fighter and statesman Bijayananda Patnaik, popularly known as Biju Patnaik, who was born on the 5th of March, 1916. Considered the architect of modern Odisha, Biju is lovingly referred to as the hero of Kalinga and the Karavela of Kalinga.
Biju Patnaik was educated at Ravenshaw College in Odisha, but due to his interest in aviation, dropped out and trained as a pilot. Patnaik flew with the private airlines, but at the start of the Second World War, he joined the Royal Indian Air Force. While in service, he developed an interest in nationalist politics and used Air Force transports to deliver what was seen as subversive literature to Indian troops.
He was jailed by the British for dropping political leaflets to Indian soldiers fighting under British command in Burma and flying clandestine missions that carried Congress Party leaders from hideouts across India to secret meetings that charted the independence struggle.
Biju joined the Quit India movement and was sent to prison for 2 years in 1943. Biju was also instrumental in assisting Indonesia with its independence struggle against the Dutch in 1947.
The Indonesian Prime Minister, Sultan Sjahrir, was placed under surveillance by the colonial Dutch. Jawaharlal Nehru entrusted the task of rescuing Sultan Sjahrir to Biju Patnaik. Biju braved all obstacles and brought Sultan Sjahrir and staff aboard from Java Islands on the 22nd of July 1947 to Singapore and finally to Delhi. An indebted Indonesia conferred the highest civilian award, Bhumi Putra, to Biju.
In 1946, Patnaik was elected uncontested to the Odisha Legislative Assembly from North Cuttack constituency. He served twice as the Chief Minister of the State of Odisha. We salute the great freedom fighter.
Yes, and Anna Andreyevna Gorenko passed away on this day in 1966, better known by the pen name Anna Akhmatova. She was a Russian poet, one of the most significant of the 20th century. She reappeared as a voice of Russian poetry during World War II. She was nominated for the Nobel Prize in Literature in 1965 and 1966.
आज जन्मदिवस है भारतीय अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, डबिंग कलाकार और गायक नासिर का। इनका वास्तविक नाम मोहम्मद हनीफ है। ये मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म उद्योगों में काम करते हैं। इन्होंने कुछ कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला फिल्मों में भी काम किया है। दक्षिण भारतीय भाषा की फिल्मों के अलावा नासिर ने चाची 420, फिर मिलेंगे, निशब्द, राउडी राठौड़ और सीरियस मैन जैसी हिंदी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया है। इन्होंने बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन फिल्मों में बिजल देव की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए सुनते हैं इनकी फिल्म राउडी राठौर से एक संवाद।
जो बोलता है वो करता नहीं, अगर वो करने वाला होता बोलता नहीं।
इतना घबरा गया कि फोन पर बतिया रहा है। हम तो त्योहार क्रिया कर्म करने के लिए इधर गोदाम में इंतजार कर रहे थे।
Yes, and the first Indian Commander-in-Chief, CNC, of the Indian Air Force, Subrata Mukherjee, was born on this day in 1911. He was awarded several honours during the course of a three-decade-long career, ended by his untimely demise in 1960. Mukherjee has been called the father of the Indian Air Force. And also, Sir Firozi, Selva Raghavan was born on this day. He's an Indian film director, screenwriter and actor who has directed and acted predominantly in Tamil films and a few Telugu films. He had his directorial debut with Thuluvadu Ilamai in 2002. Still, his father is credited for business reasons, which stars his brother Dhanush. Selva Raghavan went on to make a series of romantic drama films with Kadal Kondain in 2003, also starring Dhanush, and 7G Rainbow Colony, 2004, before also venturing into coming-of-age films Pudupettai, 2006, and Mayakam Enna, 2011, both starring Dhanush. And he has also ventured into making science fiction and fantasy films, such as depicting a fantasy Chola kingdom in Ayarathil Oruvan in 2010 and a parallel universe in Irandam Ulugam in 2013. He has been critically acclaimed for his directorial skills, and he has made his film acting debut in the 2022 film Beast.
आज जयंती है गंगूबाई हंगल की। ये भारत की प्रसिद्ध ख्याल गायिका थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत के किराना घराने का प्रतिनिधित्व करने वाली गंगूबाई हंगल ने जातीय बाधाओं को पार कर संगीत क्षेत्र में आधे से अधिक सदी तक अपना योगदान दिया। गंगूबाई हंगल को कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनका गाया एक राग।
Yes, and Saurabh Shukla was born on this day, 1963. He's an actor, screenwriter, and film director who works in Hindi and a few Tamil and Telugu films. He's best known for his roles in Satya, Nayak, The Real Hero, Yuva, Lage Raho Munna Bhai, Barfi, Jolly LLB. For the latter, he won the National Film Award for Best Supporting Actor. Other notable films are Kick, PK, Jolly LLB 2, and Raid. He has also worked in a short documentary with Ruth Agnihotri and Rachel Agnihotri in Goa. Let's listen into a dialogue from one of his movies.
अरे राजपाल साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे उतरते नहीं हो, कभी कभी हमें भी दर्शन दे दिया करो यार।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार।
राजपाल साहब,
या sure.
ये गलायत बिल्डर्स जो हैं, ये नोएडा वाले, ये आपके
ब्रदर इन लॉ?
हाँ ब्रदर इन लॉ। हाँ नहीं, मैं एक छोटा सा थ्री बेडरूम हॉल देख रहा था, वहां पे रेट बहुत लगा रहे हैं।
मैं बात कर लूं
राजपाल साहब? एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी आप
सर, मैं विटनेस पेश करूं सर। अगर
तुमसे दो मिनट सबर नहीं होता क्या? तुमसे गाड़ी छूटी जा रही है क्या? हैं?
सॉरी सर।
अब कोर्ट में एसी लगवा, इतनी गर्मी है, पसीने छूट रहे, आप 8-8 घंटा कोर्ट चलाते, कैसे काम करते आप?
ऐसे ही चलाते हैं राजपाल साहब, दो महीने से एप्लीकेशन डाल रखी हमने, पंखे चल रहे हैं वही बहुत समझो।
ये कोर्ट है मिस्टर त्यागी, यहाँ जल्दी कुछ नहीं होता।
राजपाल साहब मैं बैठा हूँ ना, आप बेफिक्र रहो, आपके क्लाइंट का कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगा। बच्चा वैसे भी घर पे बोर हो रहा होगा, हमारी कोर्ट देख लेगा, हैं जी? तो मैं डेट दे रहा हूँ भाई, हाँ? ओके।
Yes, and Alik Padamsi was born on this day in 1928. He was an Indian theatre personality and ad filmmaker. He played Muhammad Ali Jinnah in the 1982 British period film Gandhi. Besides being involved in Indian theatre as an actor and producer, Padamsi was an advertising professional who once headed the advertising company Lintas Bombay. The President of India conferred on him the Padma Shri in 2000. The Advertising Club of Mumbai named him Advertising Man of the Century and received Sangeet Natak Academy Tagore Ratna in 2012. His autobiography is A Double Life, My Exciting Years in Theatres and Advertising.
आज जयंती है सुमंत मूल गांवकर की। इन्होंने पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से एजुकेशन प्राप्त की थी। ये टाटा स्टील के वाइस चेयरमैन के रूप में भी काम कर चुके हैं। सुमंत मूल गांवकर एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इसके साथ ही इन्हें टाटा मोटर्स के आर्किटेक्चर के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें 1990 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया।
John Anthony Frusciante was born on this day in 1970. He is an American musician and guitarist of the Red Hot Chili Peppers, having been with the band across three stints. Let's listen in to his hit track, Can't Stop.
Can't stop, addicted to the shindig. Chop top, he says I'm gonna win big. Choose not to life of imitation. Distant cuts into the reservation. Keep off the pistol that you pay for.
आज पुण्यतिथि है जलाल आगा की। ये भारतीय अभिनेता और निर्देशक थे। ये लोकप्रिय हास्यक अभिनेता आगा के बेटे थे। इन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और 1960 की सर्वकालिक हिट फिल्म मुगले आजम में युवा जहांगीर की भूमिका निभाई। इसके अलावा इन्होंने बॉम्बे टॉकी, गांधी, किम और द डिसीवर्स जैसी अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में भी काम किया।
Eva Mendes was born on this day in 1974. She is a retired American actress. Her acting career began in the late 1990s with roles in films such as Children of the Corn 5, Fields of Terror and Urban Legends Final Cut. Mendes' performance in Training Day in 2001 marked a turning point in her career and led to parts in commercially successful films. And also, Sarfirozi, Andrew Roy Gibb was born on this day in 1958. He was an English singer and songwriter. He was the younger brother of Barry, Robin and Morris Gibb, musicians who had formed the Bee Gees in the late 1950s. Let's listen in to the hit track, Shadow Dancing.
You got me looking at the hair. I was chasing your direction. I was telling you no lies, and I was loving you. When the words are said, baby, I lose my head.
श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सरफिरोजी और अभिषेक मुखोपाध्याय को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।